ऑडियो पिटारा प्रस्तुत करता है मेपल प्रेस द्वारा प्रकाशित बुक्स, जिन्हें सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से रिकॉर्ड किया गया है। ये कहानियाँ शिक्षाप्रद और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित हैं, लेकिन इनका उद्देश्य किसी भी नैतिक या सामाजिक संदेश को प्रचारित करना नहीं है। ऑडियो पिटारा इसके लिए किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लेता है। प्रत्येक श्रोता या सुनने वाले को सलाह दी जाती है कि वे इन कहानियों को सिर्फ मनोरंजन के लिए ही सुने और नैतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से अपनी विवेकशीलता के संदर्भ में समझें।
ऑडियो पिटारा, सुनना जरूरी है।
सादत हसन मंटो का फसाना, अमीना। दूर तक धान के सुनहरे खेत फैले हुए थे। जुम्मे का नौजवान लड़का बिंदु कटे हुए धान के पोले उठा रहा था और साथ ही साथ गा भी रहा था। धान के पोले धर धर कांदे भर भर लाए, खेत सुनहरा धन दौलत रे। बिंदु का बाप जुम्मा गांव में बहुत मकबूल था। हर शख्स को मालूम था कि उसको अपनी बीवी से बहुत प्यार है। उन दोनों का इश्क गांव के हर शख्स को मालूम था। उनके दो बच्चे थे, एक बिंदु जिसकी उम्र 13 बरस के करीब थी, दूसरा चंदू। सब खुशो खुरम थे, मगर एक रोज अचानक जुम्मे की बीवी बीमार पड़ गई। हालत बहुत नाजुक हो गई थी। बहुत इलाज किए, टोने टोटके आजमाए, मगर उसको कोई इजाफा ना हुआ। जब मर्ज मौलिक शक्ल इख्तियार कर गया तो उसने अपने शौहर से नसीफ लहजे में कहा, तुम मुझे कबूतरी कहा करते थे और खुद को कबूतर। हम दोनों ने दो बच्चे पैदा किए, अब तुम्हारी कबूतरी मर रही है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मरने के बाद तुम कोई और कबूतरी अपने घर ले आओ। थोड़ी देर के बाद उस पर हजियानी कैफियत तारी हो गई। जम्मे की आंखों से आंसू रवा थे और उसकी बीवी बोले चले जा रही थी, तुम और कबूतरी ले आओगी, वो सोचेगी कि जब तक मेरे बच्चे जिंदा हैं तुम उससे मोहब्बत नहीं करोगे, चुनांचे वो उनको जब है करके खा जाएगी। जुम्मे ने अपनी बीवी से बड़े प्यार के साथ कहा, सकीना, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जिंदगी भर दूसरी शादी नहीं करूँगा, मगर तुम्हारे दुश्मन मरे, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। सकीना के होठों पर मुर्दा सी मुस्कुराहट नूमदार हुई। इसके फौरन बाद उसकी रूह कफस से उनसुरी से परवास कर गई। जुम्मा बहुत रोया। जब उसने अपने हाथों से उसको दफन किया तो उसको ऐसा महसूस हुआ कि उसने अपनी जिंदगी मानो मिट्टी के नीचे गाड़ दी है। अब वो हर वक्त मगमूम रहता कामकाज में, उसे कोई दिलचस्पी ना रही। एक दिन उसके एक वफादार मजारा ने उससे कहा, सरकार, बहुत दिनों से आपकी ये हालत देख रहा हूँ, जी ही जी में कुड़ता रहा हूँ। आज मुझसे नहीं रह गया तो आपसे ये अर्ज करने आया हूँ कि आप अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं, अपनी जमीनों की तरफ कोई तवज्जो नहीं देते। आपको इसका इल्म भी नहीं कि कितना नुकसान हो रहा है। जुम्मे ने बड़ी तवज्जी से कहा, होने दे, मुझे किसी चीज का होश नहीं। सरकार, आप होश में आइए, चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन है। ऐसा ना हो कि वो आपकी गफलत का फायदा उठाकर आपकी जमीनों पर कब्जा कर ले। आपसे मुकदमाबाजी क्या होगी? मेरी तो यही मुखली सना राय है कि आप दूसरी शादी कर लें, इससे आपके गम का बोझ हल्का हो जाएगा और वो आपके लड़कों से प्यार मोहब्बत भी करेगी। जुम्मे को बहुत गुस्सा आया। बकवास ना करो रमजानी, तुम समझते नहीं कि सौतेली माँ क्या होती है। इसके अलावा तुम ये भी तो सोचो, मेरी बीवी की रूह को कितना बड़ा सदमा पहुँचेगा। बहुत दिनों के इसरार के बाद आखिर रमजानी अपने आका को दूसरी शादी पर रजामंद करने में कामयाब हो गया। जब शादी हो गई तो उसने अपने लड़कों को एक अलहदा मकान में भेज दिया। हर रोज वहाँ कई कई घंटों रहता और बिंदु और चंदू की दिलजुई करता रहता। नई बीवी को ये बात बहुत नागवार गुजरी। एक बात और भी थी कि मक्खन दूध का बेशतर हिस्सा उसके सौतेले बेटों के पास चला जाता था। इससे उसे बहुत जलन होती। उसको तो ये मतलब था कि घर बार के मालिक वही हैं। एक दिन जुम्मा जब खेतों से वापस आया तो उसकी नई बीवी जारो कतार रोने लगी। जम्मे ने इस आहो जारी की वजह पूछी तो उसने कहा, तुम मुझे अपनी नहीं समझते, इसलिए बच्चों को दूसरे मकान में भेज दिया है। मैं उनकी माँ हूँ, कोई दुश्मन तो नहीं। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं सोचती हूँ कि बेचारे अकेले रहते हैं। जुम्मा इन बातों से बहुत मुतासिर हुआ और दूसरे ही दिन बिंदु और चंदू को ले आया और उनको सौतेली माँ के हवाले कर दिया, जिसने उनको इतने प्यार मोहब्बत से रखा कि आसपास के तमाम लोग उसकी तारीफ में रत्ब उल लिसान हो गए। नई बीवी ने जब अपने खाविंद के दिल को पूरी तरह मोह लिया तो एक दिन एक मजारा को बुलाकर अकेले में उससे बड़े राजदारना लहजे में कहा, मैं तुमसे एक काम लेना चाहती हूँ, बोलो करोगे? उस मजारा ने, जिसका नाम शबराती था, हाथ जोड़कर कहा, सरकार आप माई बाप हैं, जान तक हाजिर है। नई बीवी ने कहा, देखो कल दरिया के पास बहुत बड़ा मेला लग रहा है, मैं अपने सौतेले बच्चों को तुम्हारे साथ भेजूंगी, उनको क्षति की सैर कराना और किसी न किसी तरह जब कोई और देखता ना हो उन्हें गहरे पानी में डुबो देना। शबराती की जहनियत गुलामाना थी, इसके अलावा उसको बहुत बड़े इनाम का लालच दिया गया था। वो दूसरे रोज बिंदु और चंदू को अपने साथ ले गया, उन्हें कश्ती में बिठाया, उसको खुद खेना शुरू किया, दरिया में दूर तक चला गया जहां कोई देखने वाला नहीं था। उसने चाहा कि उन्हें धक्का देकर डुबा दे, मगर एकदम उसका जमीर जाग उठा। उसने सोचा, इन बच्चों का क्या कसूर है सिवाय इसके कि उनकी माँ मर चुकी है और अब ये सौतेली माँ के रहमो करम पर है। बेहतर यही है कि मैं इन्हें किसी शख्स के हवाले कर दूं और सौतेली माँ से जाकर कह दूं दोनों डूब चुके हैं। दरिया के दूसरे किनारे उतरकर उसने बिंदु और चंदू को एक ताजिर के हवाले कर दिया, जिसने उनको मुलाजिम रख लिया। बड़ा लड़का बिंदु खेल कूद का आदि मेहनत मशक्कत से बहुत घबराता था। ताजिर के यहाँ से भाग निकला और पैदल चलकर दूसरे शहर पहुंच गया, मगर वहां उससे दौलतमंद आदमी के यहाँ, जिसका नाम कलंदर बेग था, पनाह लेनी पड़ी। कलंदर बेग नेक दिल आदमी था, उसने चाहा कि बिंदु को अपने यहाँ नौकर रख ले। चुनांचे उसने उससे पूछा, खुरदार क्या तनख्वाह लोगे? बिंदु ने जवाब दिया, जनाब मैं तनख्वाह नहीं लूंगा। कलंदर बेग को किसी कदर हैरत हुई, लड़का शक्लो सूरत का अच्छा था, उसमें गवारपन भी नहीं था। उसने पूछा, तुम किस खानदान के हो, किस शहर के बाशिंदे हो? बिंदु ने इस सवाल का कोई जवाब ना दिया और खामोश रहा, फिर रोने लगा। कलंदर बेग ने उससे मजीद इस्तिफार करना मुनासिब ना समझा। जब बिंदु को उसके यहाँ रहते हुए काफी अरसा गुजर गया तो कलंदर बेग उसकी खुश अतवारी से बहुत मुतासिर हुआ। एक दिन उसने अपनी बीवी से कहा, बिंदु मुझे बहुत पसंद है, मैं तो सोचता हूँ कि उससे अपनी एक लड़की ब्याह दूं। बीवी को अपने खावंद की यह बात बुरी लगी, लेकिन आखिर उसने कहा, आप उसके खानदान के मुतल्लिक तो दरियाफत कीजिए। कलंदर बेग ने कहा, मैंने एक मर्तबा उससे उसके खानदान के मुतल्लिक पूछा तो वो जोर जोर से रोने लगा, फिर मैंने इस मौजू पर उससे कोई गुफ्तगु ना की। बिंदु कई बरस कलंदर बेग के यहाँ रहा, जब 20 बरस का हो गया तो कलंदर बेग ने अपना सारा कारोबार उसके सुपुर्द कर दिया। काफी अरसा गुजर गया, एक दिन बिंदु ने बड़े अदब से अपने आका से दरखास्त की, दरिया के उस पार दूर जो एक गांव है वहां मैं एक छोटा मकान बनाना चाहता हूं, क्या मुझे आप इतना रुपया मरम्मत फरमा सकते हैं कि मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए? कलंदर मुस्कुराया, तुम जितना रुपया चाहो ले सकते हो बेटा, लेकिन ये बताओ कि तुम दरिया पार उतनी दूर मकान क्यों बनवाना चाहते हो? बिंदु ने जवाब दिया, ये राज आप पर अनकरीब खुल जाएगा। बिंदु और चंदू का बाप अपने बेटों की फिराक में घुल घुल के मर चुका था। मजारों की बड़ी अबतर हालत थी, इसलिए कि जमीनों की देखभाल करने वाला कोई भी न था। बिंदु बहुत सा रुपया लेकर अपने गांव पहुंचा और एक पक्का मकान बनवाया और मजारों को खुशहाल कर दिया। बिंदु का भाई चंदू, जिस शख्स के यहाँ मुलाजिम हुआ था, उसने उसको बेटा बना लिया था। एक दफा वो खतरनाक तौर पर बीमार पड़ गया तो उस शख्स की बीवी ने, जिसका नाम समत खान था, अपनी बेटी अमीना से कहा कि वो उसकी तीमारदारी करे। अमीना बड़ी नाजुक इंदाम हसीन लड़की थी, दिन रात उसने चंदू की खिदमत की, आखिर वो सेहतमंद हो गया। तीमारदारी के इस दौरान में वो कुछ इस तरह घुल मिल गए कि उन दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। मगर चंदू सोचता था कि अमीना एक दौलतमंद लड़की है और मैं महज कंगला, उनका आपस में क्या जोड़ है? उसके वालिद भला कब उनकी शादी पर राजी होंगे? लेकिन अमीना को किसी कदर यकीन था कि उसके वालदेन राजी हो जाएंगे, इसलिए कि वो चंदू को बड़ी अच्छी निगाहों से देखते थे। एक दिन चंदू गाय भैंसों के रेवड़ को जोहड़ पर पानी पिला रहा था कि अमीना दौड़ती हुई आई। उसकी सांस फूली हुई थी, नन्ना सा सीना धड़क रहा था। उसने खुश खुश चंदू से कहा, एक अच्छी खबर लाई हूँ, आज मेरे माँ बाप मेरी शादी की बात कर रहे थे, उन्होंने फैसला लिया है कि तुम बड़े अच्छे लड़के हो, इसलिए तुम्हें मेरे साथ ब्याह देना चाहिए। चंदू इस कदर खुश हुआ कि उसने अमीना को उठाकर नाचना शुरू किया। उन दोनों की शादी हो गई। एक साल बाद उनके यहाँ लड़का पैदा हुआ, जिसका नाम जमील रखा गया। जब बिंदु अपने गांव में अच्छी तरह जम गया तो उसने भाई का पता लिया, जाके उससे मिला। दोनों बहुत खुश हुए। बिंदु ने उससे कहा, अब अल्लाह का फजल है, चलो मेरे साथ और दीवानी संभालो, मैं चाहता हूं तुम्हारी शादी अपनी साली से करा दूं, बड़ी प्यारी लड़की है। चंदू ने उसको बताया कि वो पहले ही शादीशुदा है। सारे हालात सुनकर बिंदु ने उसको समझाया, कलंदर बेग दौलतमंद आदमी है, उसकी लड़की से शादी कर लो, सारी उम्र ऐश करोगे, अमीना के बाप के पास क्या पड़ा है। चंदू अपने भाई की ये बात सुनकर लालच में आ गया और दौलतमंद अमीना को छोड़ तलाकनामा किसी के हाथ भिजवा दिया और उससे मिले बगैर चला गया। चंद रोज के बाद ही बिंदु ने अपने भाई की शादी कलंदर बेग की छोटी लड़की से करा दी। अमीना हैरानो परेशान थी कि उसका प्यारा चंदू एकदम कहाँ गायब हो गया, लेकिन उसको यकीन था कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, एक दिन जरूर वापस आएगा। बड़ी देर उसने उसकी वापसी का इंतजार किया और उसकी याद में आंसू बहाती रही। जब वो ना आया तो अमीना के बाप ने जमील को साथ लिया और बिंदु के गांव पहुंच गया। उसकी मुलाकात चंदू से हुई। वो दौलत के नशे में सबको भूल चुका था। अमीना के बाप ने उसकी बड़ी मिन्नत समाजत की और उससे कहा, और कुछ नहीं तो अपने कमसिन बेटे का ख्याल करो, तुम्हारे बगैर इस बच्चे की जिंदगी क्या है। चंदू ने ये कोरा जवाब दिया, मैं अपनी दौलत और इज्जत इस बच्चे के लिए नहीं छोड़ सकता हूँ, जाओ इसको ले जाओ, मेरी नजरों से दूर कर दो। जब अमीना के बाप ने और ज्यादा मिन्नत समाजत की तो चंदू ने उस बूढ़े को धक्के देकर बाहर निकलवा दिया, साथ ही अपने बच्चे को भी। बूढ़ा बाप गमो अंधो से चूर घर पहुंचा और अमीना को सारी दास्तान सुना दी। अमीना को इस कदर सदमा पहुंचा कि पागल हो गई। चंदू पर पे दर पे इतने मसाइब आए कि उसकी सारी दौलत उजड़ गई। भाई ने भी आंखें फेर ली। बीवी लड़ झगड़ कर अपने मैके चली गई। अब उसको अमीना की याद आई, वो उससे मिलने के लिए गया। उसका बेटा जमील हड्डियों का ढांचा उसे घर के बाहर मिला। उसने उसको प्यार किया और अमीना के मुतल्लिक उससे पूछा। जमील ने उससे कहा, आओ तुम्हें बताता हूँ मेरी माँ आजकल कहाँ रहती है। वो उसे दूर ले गया और एक कब्र की तरफ इशारा करके, यहाँ रहती है अमीना अम्मा।
ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।